का था, रूह वही रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं शिवानी जी की लिखी कहानी विप्रलब्धा का दूसरा भाग। अभी तक इसके पहले भाग में आपने सुना कि नायिका बरेली से काठ गोदाम जाने के लिए ट्रेन में बैठती हैं और अकेले होने की वजह से ये सोचती हैं कि अगर सहयात्री कोई स्त्री हो तो सफ़र अच्छा कटेगा। गाड़ी के डब्बे में अंधेरा है और जो सहयात्री आती है वो एक स्त्री ही होती है, पर जब गाड़ी की उस डिब्बे में उजाला होता है, बिजली आती है, तो पता चलता है कि वो सहयात्री उनकी बचपन की सहेली है जो लगभग 24 सालों बाद सामने मिली है। दोनों बचपन की बहुत ढेर सारी बातें याद करती हैं और नायिका को याद आने लगता है कि कैसे सुंदर सी दिखने वाली निम्मी उसकी जब सगाई हुई थी तो क्या क्या हुआ था। ये सारी बातें नायिका को याद आने लगती हैं, कैसे उसकी शादी एक बहुत बड़े घर में तय हुई थी, उसके होने वाले पति का नाम सुरेश था जिसके साथ उसकी सगाई हो चुकी थी और अब शादी का दिन नज़दीक आ रहा था। अब सुनिए आगे। अंगूठी पहनाने के बाद ही छुट्टियां आ गईं और सुरेश बड़े उत्साह से पहाड़ चला गया। विवाह का केवल एक महीना रह गया था। इधर न जाने क्या सोचकर राय साहब ने दोनों के मिलने पर रोक लगा दी थी। अब वे स्वयं पहाड़ जा रहे थे और वहां दोनों का मिलना ठीक नहीं था। पहाड़ पर पहुंचते ही विवाह की तैयारियां आरंभ हो गईं। कहीं सुरेश की बीसियों ताई चाचियों के कपड़ों के जोड़ों पर चिपचिपकाए जा रहे थे, कहीं गेहूं और तिल के पर्वताकार स्तूपों को बीनने मोहल्ले टोले की महिलाओं की चींटी सी कतार चली आ रही थी। चाय और फलाहारी नाश्ते के साथ कई जोड़ा हाथ क्रियाशीलता का नाटक रच रहे थे जिसमें हाथ कम और जबानें ही ज्यादा चल रही थीं। अनाज के कंकड़ ज्यों के त्यों धरे रहते पर समाज का कूड़ा करकट खूब बीना फटका जाता। सुना बहन तुमने, अंधेर हो गया, आज तक मुसलियों की छोकरी तो पहाड़ नहीं लाए थे और फला का लड़का तो बनिए की बेटी भी हलाया, उससे तो मुसलटी भली। आज तक सास चार धाम कर आई है, अब नई बहू मदीना घुमा लाएगी। रसिक प्रिया रघुदा की बहू अपने इस बेजोड़ मजाक से सबको लोटपोट कर देती। अरे बड़ी हरामिन है तू रघुआ की दुल्हन, मरी के दिमाग में न जाने कहां से ऐसी बातें आती हैं। इसी रसिकता की रसवंती फुहारों के बीच गृह स्वामिनी कुंडे का दानेदार दही मंगवाती और देखते ही देखते भुने भांगे के नमक, शहद और दही के साथ कांचन सनिब पहाड़ी नींबू मिला, अनोखे रंग और अद्वितीय स्वाद के देवताओं के खाने योग्य खाद्य पदार्थ की सृष्टि हो जाती। कूद कर हम दोनों भी पहुंच जाती और तिमिल की चौड़ी पत्तियों में एक एक अमृत स्वरूपी फांक का प्रसाद पूरी महिला गोष्ठी में वितरित कर दिया जाता। हंसी खुशी के बीच उत्तरायण का सूर्य नित्य के अधैर्य से डूबने की चेतावनी दे बैठता तो हड़बड़ी में विवाह की तैयारी की हाट समेट ली जाती। आज सोच रही हूं बहुत अच्छा किया निम्मी जो तू पहाड़ नहीं आई, प्रांगण अब भी वही है पर अब वह पत्ते पर फांक धरकर बांटने वाली पीढ़ी बीत गई। सना नींबू खाना पास पड़ोस तो दूर अब शायद घर के ही सदस्यों को कोई नहीं न्योतता। सम्मिलित परिवारों के खोखले घरौंदे कब के ढह चुके हैं और जो एक आध नए युग के भूकंप के गहरे धक्के को सहकर भी खड़े रह पाए हैं उनमें न जाने कितने बंदी शाहजहां अश्रुपूरित नयनों से अपनी गृहस्थी के उजड़ते ताजमहल को विवशता से हाथ बांधे देख रहे हैं। उन्हीं के सुखी परिवार में जहां तिल का एक एक दाना भी बांटकर खाया जाता था, वैमनस्य की चिंगारी ने भाई भाई को खून का प्यासा बना दिया है। आज घर घर में दारा मुराद और औरंगजेब है निम्मी। उत्तरायण का सूर्य अब भी उसी अधैर्य से डूबने की चेतावनी देता है पर उसकी चुनौती को स्वीकारने बिजली की जगमगाती बत्तियां हैं। लड़कियां स्वच्छंद होकर बाजार में सिर उघारे घूमती हैं, आज उन्हें हमारी भांति टोकने वाला कोई नहीं है। युग पुरुष ने करवट ले ली है। जिस अल्मोड़ा के बचपन के चेहरे की दूधिया चिकनाहट देख चुकी थी, उसके प्रौण चेहरे पर अनुभव की झुर्रियां देखना क्या निम्मी को अच्छा लगता? 24 वर्ष पूर्व का सरल धोती का कछौटा कसे भोला कृषक पुत्र अल्मोड़ा आज कोट पैंट धारी सुशिक्षित संसारी प्रौण हो चला है। आज उसी भोले शिशु की स्मृति मुझे वेहल कर देती है। निम्मी के विवाह के 8 दिन पूर्व ही मौसी ने मुझे बड़े आग्रह से पास रहने को बुला लिया था, पर ठीक 4 दिन पहले जब चौड़ी पापड़ सी पहाड़ी पूड़ियों को रोली के स्वास्तिक से संवार धूप में सुखाया जा रहा था और नाना मंगली गीतों के बीच पीछे फुलवर के लेस लगे पिछौड़ों पर रुपया कपड़े में लपेट गुलनेरी रंग के ठप्पे धरे जा रहे थे, राय साहब भागते भागते आए और बोले, फौरन काम रोक दो। बर के ताऊ जी को दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसे। अब समधी के सूतक में विवाह की बात कैसे उठ सकती है? निम्मी अपने कमरे में बड़ी देर तक रोती रही थी। दुर्गा दत्त जी का सम्मिलित परिवार अपने आदर्श प्रेम के लिए प्रसिद्ध था, फिर सबसे बड़े भाई की मृत्यु होने पर पुत्र का मौर किस दुस्साहस से संवारते। उन्होंने कहलवा भेजा कि पूरे 1 वर्ष तक सहोदर की मृत्यु का मातम मनाएंगे। राम राम कर 1 वर्ष भी कटा। इस बीच न जाने क्या सोचकर राय साहब पुत्री को ननिहाल ही छोड़ गए। लुक छिप कर मेरे ही पते पर चिट्ठियां चलती थी और उसी अटके पत्र व्यवहार को देखकर मेरा माथा ठनका। पहले नित्य चौथे दिन सुरेश का मोटा लिफाफा आता, फिर ये कलेवर छीण पड़ने लगा और कभी कभी तो 2 सप्ताह बीतने पर भी पत्र नहीं आता। और निम्मी का सूखा चेहरा देखकर मुझे बड़ा तरस आता। मैं उसे दिलासा देने की भरचक चेष्टा करती। सबर का फल मीठा होता है निम्मी, मैंने एक दिन हंसकर उसे समझाया तो वो मुझ पर ही फैल गई। जी हाँ, और सबर का मीठा फल पेड़ ही पर लटका रहे तो क्या कभी सड़ नहीं सकता? जिस रेट से बैरी दुर्गा दत्त जी के पांडव भाई एक एक कर अच्छा खासा दिल धड़का धड़का कर स्वर्ग सिधार रहे थे, मुझे उसकी सगाई का भविष्य अंधकार में लगने लगा था। दूसरे ही वर्ष उसके मंझले चचिया ससुर चल बसे और विवाह फिर 1 वर्ष को टल गया। 6वें महीने उसके तीसरे ससुर की आंतें घर की पुरानी गाय ने सींग मारकर आंगन में फैला दी। अब तो राय साहब के धैर्य का सिंहासन भी डगमगा गया। निम्मी का एक लंबा खर्रा मेरे पास आ गया। लिखा था, लगता है मेरे श्वसुर कुल को मुर्गियों वाली रानी खेत डिजीज लग गई है, कौमार्य व्रत ही धारण करना होगा। बेचारी निम्मी। तीसरे वर्ष स्वयं दुर्गा दत्त जी के 50 वर्ष पुराने दमा ने बिना किसी पूर्व सूचना के ही उनका दम उखाड़ लिया तो बाप बेटी दोनों ने हथियार डाल दिए। जिस पुत्र के मुंडे सिर पर बाप की क्रिया का छोपा बंधा था, उस पर मोर बांधने की आशा दुराशा मात्र थी। पुत्री को लेकर राय साहब बहुत पहले बाप दादों की खरीदी गई जमीन की देखभाल करने नेपाल चले गए। जब विवाह की घड़ी आएगी तो विधाता भी नहीं टाल पाएगा, उन्होंने रोती पुत्री को मेरे ही सामने समझाया था, पर पुत्री जान गई थी कि वह घड़ी अब कभी नहीं आ सकती। न जाने किस दैवी शक्ति ने उसे भावी संकट के लिए प्रस्तुत कर दिया था। सुरेश की पहली नियुक्ति बिहार में हो गई थी। 3 अदद विधवा ताई चाचियों को लेकर वह अपने नई डिप्टी कलेक्टरी को संभालने चला गया और भावी सुनहले भविष्य की रूपरेखा संजोकर 7 पृष्ठ का पत्र निम्मी को मेरे पते पर भेज गया। पत्र क्या था? पूरा महाकाव्य था। निम्मी उसी दिन नेपाल जा रही थी। उसने पत्र पढ़ते ही मेरे सामने धज्जियों में बिखेर दिया। बोली, बनता है नालायक, चाहता को तो क्या मुझे ब्याह कर नहीं ले जा सकता था? कैसा बचपना करती है निम्मी, मैंने कहा था। वह बेचारा क्या 3 बूढ़ों को अमृत पिलाकर बचा लेता? अरे कौन कहता है बचाने को, पर हर बूढ़े के मरने पर इस स्टेट मॉर्निंग की भला क्या जरूरत थी। और वो नेपाल चली गई। दूसरे वर्ष पूरा पर्वतीय समाज कलेजा थामकर गुरु दुर्गा दत्त जी के परिवार में किसी अशुभ घटना की प्रतीक्षा करता रहा, पर उस वर्ष उस घर में से कोई अर्थी नहीं निकली। इस बीच निम्मी की अल्प बुद्धि ने स्वयं ही अपने सौभाग्य की अर्थी निकाल दी। विवाह की तिथि निश्चित करने सुरेश ने नम्रतापूर्ण पत्र लिखा तो निम्मी ने उत्तर दिया, अब के अपने घर के बड़े बूढ़ों की डॉक्टरी जांच करा लेना, तब तिथि निश्चित करना, कहीं ऐसा ना हो कि फिर मुहूर्त टल जाए। बस इसी पत्र से सुरेश भड़क गया। वैसे शायद उसका भड़कना भी उचित था। इस लंबे अरसे में वह समझ गया था कि उसकी तटस्थता एवं औदार्य को समझने की शक्ति उसकी रूप गर्विता भावी पत्नी में नहीं है। उसका आवश्यकता से अधिक स्वतंत्रता प्रेमी व्यक्तित्व एक न एक दिन अवश्य ही उसकी अनुशासित दलीलों की अवहेलना कर विद्रोह कर बैठेगा, और वह दिन सुरेश के लिए बड़े सुख का नहीं रहेगा। क्यों न तनिक साहस से दुखती डाढ़ को एक ही झटके में उखाड़ कर चैन की सांस ले ली जाए। उसने यही किया भी। अपने चाचा से कह दिया, वह गांव की अनपढ़ कन्या भले ही ले आए, पर अब उस घमंडी लड़की से रिश्ता नहीं करेगा जिसने उसके मृत गुरुजनों का अपमान किया था। सगाई टूट गई। मैंने उस वैभव मदमस्त रूप गर्विता को 3-4 पत्र भी लिखे, पर कोई उत्तर नहीं आया। स्पष्ट था कि वह अपने जीवन में झंझावात की भांति आ गए प्रेमी की स्मृति का एक एक चिन्ह मिटा देना चाहती थी, और मैं ही तो उस प्रणय काल का प्रमुख स्मृति स्तंभ थी। सुनने में आता रहा कि राय साहब ने नेपाल में लाखों रुपया पैदा कर लिया था, और शायद उसी भौतिक समृद्ध का घातक विष पिता पुत्री के पूरे शरीर में फैल गया। अत्यधिक मध्यपान से पिता की हृदय गति सहसा बंद हो गई तो निम्मी भी सब बेच बाज कर विदेश चली गई। उसका यही अंतिम समाचार मुझे मिला था, और आज इतने वर्षों बाद वह मुझे अचानक मिल गई। हर स्टेशन के आते ही वह उचक कर खिड़की से झांकने लगती। वे ही परिचित स्टेशन, पहाड़ निकट आने पर छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पर वैसे ही सरल पहाड़ी चेहरे देखती वह उत्तेजित हुई जा रही थी। लाल कुएं के स्टेशन पर मस्त बैलों की भांति दो इंजन गाड़ी को ठेलने बढ़ाए तो वह बच्ची सी किलक उठी। अरे कुछ भी तो नहीं बदला, अभी भी दो ही इंजन गाड़ी को काठ गोदाम तक ठेलते हैं। तुम भूल रही हो निम्मी, मैं बोली, अब उन दो इंजनों को स्वतंत्र भारत ठेलता है। लाख ठेले, उसने बड़ी उपेक्षा से अपनी सुंदर नाक सिकोड़ी। किसी सुरक्षित ऐतिहासिक इमारत में अकड़ी खड़ी संगमरमरी मीनार सी उसकी सुकुमार नासिका अभी भी उतनी ही आकर्षक थी। सब सुनती रहती हूँ विदेश में, अब यहीं की बात है, परसों कलकत्ता से एक बर्थ के रिजर्वेशन के लिए 10 का नोट थमाया, तब जाकर कहीं मिला। गाड़ी हल्द्वानी छोड़ रही थी। अचानक मुखरा निम्मी चुप हो गई। मैं उसके मुग्ध चेहरे को देख रही थी। प्रकृति के आंचल में तराई के अनोखे बेलबूटे उतरने लगे थे। सूखी नदी के क्षीण कलेवर में बहते शहतीर, आसपास पड़े गोल चिकने पत्थरों के स्तूपाकार गट्ठर, नारंगी फलों की सुपरचित झाड़ियाँ, लकड़ी के धुएं से काले अर्वाचीन मकानों के कंकालों के बीच उभरे सीमेंट के दुमंजले चमचमाते मकान, न जाने कितनी स्मृतियां अभागिनी को विहल कर रही थीं। एक रहस्य केवल मुझ तक ही सीमित था। एक बार किसी रिश्तेदारी के विवाह से निम्मी अकेले लौट रही थी। सुरेश उन दिनों अपनी ननिहाल हल्द्वानी आया था। वह भी स्टेशन पहुंच गया और वहीं से टिकट लेके निम्मी के साथ काठगोदा। सौभाग्य से रिक्त उस फर्स्ट क्लास में दोनों की सरस यात्रा के सजीव वर्णन से भरा निम्मी का लंबा पत्र शायद अभी भी मेरे पास पड़ा होगा। क्या आज उसी मीठी स्मृति का विषधर उसे अपने घाट तक डंक से डस निश्चेष्ट कर रहा था। मेरी उपस्थिति को भूल वह खिड़की पर सर टिकाए मंथर गति से रेंगती गाड़ी के औदार्य से एक एक पेड़ पत्ते को आंखों ही आंखों में पी रही थी। अचानक मेरी तीखी दृष्टि का चाबुक उसकी गर्दन पर लगा। वह हंसकर मेरी ओर मुड़ी। क्या देख रही है ऐसे? क्या बहुत अधेड़ लग रही हूँ? मैं खिसिया गई। नहीं निम्मी, वही तो नहीं लग रही, जलन हो रही है तुझे देखकर। पगली कहीं की, उसका स्वर भावना के गहर में डूब गया। तेरा क्या, लड़कियों का विवाह पक्का हो गया है, पति है, सुखी गृहस्थी है, और मेरा तो, well, my face is my fortune। मैं चौंकी, कहीं संसार के प्राचीनतम मीना बाजार में अपने रूप के हाट की उजड़ती दुकान का उल्लेख तो नहीं कर रही थी। पर आंखें पोंछ कर वह हंस दी और उस उज्जवल निर्मल हास्य ने मेरी दुश्चिंतता को धो पोंछ कर बहा दिया। मेरी अपनी ये धारणा है कि कलुष और पाप की छाया किसी भी नारी या पुरुष के चेहरे को रंजित के बिना नहीं छोड़ती। चंदन या रोली की पावन बिंदुली, रामनामी दुपट्टा ओढ़े व्रत अनुष्ठान के व्यूह के बीच लौह स्तंभ से खड़े बगुला भक्तों की दाढ़ी के तिनके तनिक चेष्टा करने पर ही बड़ी सुगमता से बीने जा सकते हैं, पर उस निष्कलुष चेहरे के भोलेपन में किसी ठगी का फरेब नहीं था। काठगोदाम आया तो हम दोनों वेटिंग रूम की ओर लप, दोनों पहाड़ी कंठ चाय की चाहत से व्याकुल हुए जा रहे थे। बैरा को चाय के लिए कहकर निम्मी आराम कुर्सी पर लद गई। थोड़ी देर सुस्ता कर चल देंगे, एक टैक्सी कर ली जाए। क्यों, एकांत में बतियाते चलेंगे, उसने कहा। एकांत में वह मुझसे किसकी कुशल पूछना चाहती थी मैं समझ गई, और तभी मुझे लगा मुंह बाए खड़ी खंदक को शायद वह अज्ञानवश नहीं देख पाई या फिर देखकर भी अनदेखी कर रही है। उसका यह अदम्य उत्साह, बिछड़ी जन्मभूमि से मिलने की ललक, क्या मामा के पुत्री की विवाह तक जाती रह पाएगी? बैरे को टिप देकर उसने बटुआ खोल नन्हे रुमाल से होंठ पोंछ लिए, फिर चाय से धुल गई लालिमा को लिपस्टिक की गाढ़ी रेखा से आरक्त किया। वो सदा से ही किसी कुशल चितेरे की भांति अपने क्यूपिड अधरों को रंगती थी। क्यों, अब चला जाए? वह उठ गई। निम्मी, मैंने उस नर्म दिल डॉक्टर की भांति भूमिका बांधी जो मृत्यु द्वार पर खड़े अपने मरीज को मृत्यु की संभावना से परिचित कराता है। हो सकता है दुस्साहसी हंसी मरीज मुस्कुरा कर कह दे, जानती हूँ जी मुझे मरना है, पर मृत्यु से कैसा भय? मैंने गला खंखारा, कैसे आरंभ करूं? पर इस बीच निम्मी ने बातों का उलझा तागा सुलझा सूत्र मेरे हाथ में स्वयं पकड़ा दिया। इतना अच्छा लग रहा है, जी में आ रहा है पंख लगाकर अल्मोड़ा की तरह उड़ चलूं। जिस मीना की छठी की पूड़ियां भी नहीं खाई थी उसी के विवाह भोज में जा रही हूं। पर मामी की अकल तो देख, यह लिखा ही नहीं कि विवाह किससे हो रहा है। बस उसने सीढ़ी रख दी थी, अब मुझे पाँव साधकर नीचे उतरना था। जानती है किससे हो रहा है? सुरेश के लड़के से, मैं एक ही सांस में कह गई। निम्मी कुर्सी पकड़ पीसा की मीनार सी एक ओर को ढहने लगी तो मुझे लगा कि वो गिर पड़ेगी। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, पर दूसरे ही क्षण उसने सहसा भिज गए होंठ स्वतः बुदबुदाने लगे। ये तो छोटी मामी का सरासर अन्याय है, कम से कम यह तो लिख ही देती, उन्होंने कैसे सोच लिया कि मैं इस विवाह में ना आ सकूंगी? अनुपस्थित मामी के प्रति उसका उपालंब आंखों में छलक उठा। तुम चल दो, अब मैं आगरा फोर्ट से ही लौट जाऊंगी। ये तुम मामी को दे देना, जब उनका निमंत्रण मिला मैं हांगकांग में थी, वहीं एक साधारण सा उपहार ले लिया था। उसके साधारण उपहार का स्तर देखकर मैं दंग रह गई। मखमली डिबिया में झलमलाते हीरे के कर्ण फूल स्वयं अपना मूल्य बता रहे थे। फिर कभी मिलेंगे, उसने हंसकर कहा। पर आंसुओं की चिलमन से झांकती व्यथा की म्लान छाया उसके होंठों तक उतर आई थी। उसके दोनों होंठ बुरी तरह कांप रहे थे। मेरे कुछ कहने पर वह टूट पड़ेगी सोच मैंने अपना बटुआ खोल कर्ण फूल संभाले और चलने को मुड़ी। एक उपहार तो रह ही गया, उसने कहा, इसे सुरेश को दे देना, अपने बेटे की बहू को पहना देगा। देखते ही देखते उसने नीलम की अंगूठी उतार कर मुझे थमा दी। इसे रहने देना, मैंने डरते डरते कहा। वो बोली, किसके लिए रहने दूं? आंसू की दो बड़ी बड़ी बूंदें कोर से नीचे ढुलक गईं। उसने उन्हें पोंछने का कोई प्रयत्न नहीं किया। बोली, आज तक जिसके लिए मूर्खतावश इसे पहनती रही, वह मेरे अज्ञान से अंधी कल्पना में अभी भी किसी के लिए कुंवारा बैठा था। आज अचानक वही अपने बेटे की बारात सजाकर चल दिया तो अब किसके लिए पहनूं? मेरी बस चली तो वह देर तक रुमाल हिलाती रही। काश आज सुरेश उसे देख पाता, सिर से पैर तक कहीं तो कुछ बदली होती, पर कहां देखेगा अब उसे। कल तक वह ना जाने किस विदेश के आकाश की गगनचरणी बन जाएगी। घर पहुंचते ही मैंने मौसी को उसका उपहार थमा दिया। वर्षों से बिछड़ी द्वार तक आकर लौट गई भांजी की स्मृति में मौसी ने एक दो आंसू बहाए, फिर घर के पुराने सुनार से हीरे जचवाने चली गई, असली है या नकली। अंगूठी मैंने नहीं दी। विवाह के उल्लास उदधि में पूरा घर डूबा था। सजे शामियाने के नीचे बैठे अतिथियों का गुरखा बैंड लुभावनी लोकधुनों से मनोरंजन कर रहा था। रंगीन बत्तियों के लट्टुओं की नीली पीली रोशनी में चमकते सुरेश को उसके समधी ने न जाने किस रसिकता की फुलझड़ी से गुदगुदा दिया था। खूब हंस रहा था वो। उसका युवा पुत्र काली शेरवानी में चमकता दमकता बार बार इधर उधर आंखें घुमाता किसी को ठीक वैसे ही ढूंढ रहा था जैसे 24 वर्ष पूर्व उसका पिता अपनी सगाई के दिन किसी को ढूंढ रहा था। पर सुरेश कितना बदल गया था। चेहरे पर सुख संतोष की लाली थी, आंखों में प्रभुता का मद और सुखी संपन्न गृहस्थी का विज्ञापन देने छोटी सी तोंद भी निकल आई थी। उस उल्लास की गोधूली को मैं दीन ही मुद्रिका डारी कर किस दुस्साहस से मिलान करती। अंगूठी मैंने बटुए में रख ली। दूसरे दिन विदा होने लगी तो भीड़ में जाकर अवगुंठ नवती नववधु को पसीने से तर उंगली में चटपट उंगली पहना मैं तीर सी निकल फिर भीड़ में घुल मिल गई। मेरा काम पूरा हो गया था। जिसे देनी थी उसे तो नहीं दे सकी, पर जिसे पहनाए जाने की निम्मी ने इच्छा प्रकट की थी उसकी उंगली तक तो पहुंचा ही थी। घूंघट से दबी मीनी जान भी नहीं पाई होगी कि अंगूठी उसे कौन पहना गया। अपनी सूझबूझ और फुर्ती चातुर्य पर मुझे गर्व भी हुआ। अपने बेटे की बहू की उंगली में उस अंगूठी को एक न एक दिन वह देख ही लेगा जिसे दिखाकर सालने के लिए यह उपहार दिया गया था। इतना मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि एक बार पहनने पर शायद संसार की कोई भी स्त्री उस सुंदर चौकोर नीलम को अपनी उंगली से स्वेच्छा से विलग नहीं होने देगी। पर काल मत्स्य के गर्भ से निकली और अपनी विप्रलब्धता नायिका की लौटाई गई उस नीलांगुरीय को क्या इस युग का दुष्यंत पहचान पाएगा? अभी आप सुन रहे थे शिवानी जी की लिखी कहानी विप्रलब्धा। गाथा में इसे आपके लिए प्रस्तुत किया पूजा श्रीवास्तव ने।